namaha siddhibhyaha. Yār jñāna shakti koti surya rannu mīride mattu yār divya dhvaniyu loka hitava māḍide mūru loka dalli yār kīrti vyāptavāgide antha deva devarali nanna taliyu bāgide ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜಿನಾಗಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 75. जिस प्रकार से अनुवृतों को धारण करने वाला वह श्रावक दूसरी प्रतिमा में आने वाले पांच अनुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों को धारण करके प्रथम के जो पांच अनुव्रत होते हैं इनके विकास के लिए, विकास भी इसलिए कि अनुव्रतों को ही महाव्रत के रूप में कन्वर्ट करना है, इसलिए गुणव्रतों के माध्यम से अनुव्रतों का विकास करते हुए जीवन में से अनावश्यक पापों को सर्वप्रथम घटाता है, फिर घटाते घटाते आवश्यक पाप को भी कम करता हुआ चलता है, फिर चलते चलते एक दिन केवल एक वस्त्र परिग्रह को छोड़कर बाकी समस्त परिग्रहों का त्यागी बन जाता है. जब वह महाव्रति बनता है उस समय एकमात्र वस्त्र परिग्रह को ही त्याग करके वह महाव्रती बनता है. कौन सा परिग्रह त्याग करके? केवल एक ही तो त्यागता है. लंगोटी भर बच जाती है ऐलक अवस्था में और केवल एक वस्त्र मात्र रह जाता है. इस प्रकार से वह 12 अनुव्रतों के माध्यम से जीवन में से सारे पापों को कम किया, सारे आर्त रौद्र ध्यान को हटा दिया, धर्म ध्यान में तल्लीन होने का अभ्यास बढ़ाया और वस्त्र को भी त्याग करके रौद्र ध्यान को रोक दिया और धर्म ध्यान बच जाता है. आर्त ध्यान भी वैसे रह जाता है मुनि अवस्था में, किंतु रौद्र ध्यान रह नहीं पाता. रौद्र ध्यान हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये जो चार प्रकार का रौद्र ध्यान है यह हिंसा का कारणीभूत है, इससे हिंसा होती है. किस ध्यान से? रौद्र ध्यान से. इसमें परिणाम क्रूर होते हैं. हिंसानंद अर्थात पर जीवों को पीड़ा पहुंचाना, उनके प्राणों का घात करना, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए आत्मा को कठोर होना पड़ता है. आत्मा को रौद्र ध्यान, उग्र ध्यान को करना पड़ता है, उग्र परिणामों को धारण करना पड़ता है, तब रौद्र ध्यान होता है. हिंसानंद मृषानंद, चोरी करने के लिए भी कठोर होना पड़ता है, परिणाम बहुत कठोर होते हैं, तब वह चोरी भी कर लेता है. परिग्रहानंद, परिग्रह को इकट्ठा करने के जब परिणाम होते हैं तब लोभ कषाय के माध्यम से परिणाम कठोर हो जाते हैं, तब वह परिग्रह को संग्रहित करता है. चौर्यानंद, परिग्रहानंद और मृषानंद, जब वह परिग्रह इकट्ठा कर रहा है तो झूठ बोले बिना तो परिग्रह इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए झूठ बोलते समय में भी आत्मा को कठोर बनाना पड़ता है। आत्मा को कठोर बना करके इस तरह से चार हंतों में वह चार प्रकार से वह रौद्र ध्यान करता है। रौद्र ध्यान का मूल परिग्रह है। जिस दिन लंगोटी भी छूट जाती है उसी दिन चारों प्रकार के रौद्र ध्यान छूट जाते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा आचार्यों ने भी सारे ग्रंथों में व्याख्यान किया है इस संबंध में। किंतु मुनि बनने के बाद भी आर्त ध्यान नहीं छूटता, क्वचित कदाचित कभी कभी एकाध बार आर्त ध्यान हो सकता है। आर्त ध्यान चार प्रकार का होता है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध, ये आर्त ध्यान हैं। सारे परिग्रहों को, समस्त परिग्रहों को त्याग करने के बाद भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग संबंधित, पीड़ा चिंतन निदान बंध संबंधित आर्त ध्यान रह सकता है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है तो देखो, मुनि महाराज के लिए कोई शरीर में रोग हो गया तो अनिष्ट का संयोग हो गया। ओहो, मुझे रोग हो गया, अब संयम का पालन करना कठिन हो रहा है, विघ्न आ गया। इस प्रकार से अनिष्ट का संयोग होने पर मन में मलिनता आती है, मन में संक्लेश भी हो सकता है रोग को लेकर के। तो उस समय होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं। रोग पर विजय प्राप्त करने के भी परिणाम हम जगा सकते हैं, और यदि ऐसे परिणाम जग गए तो निश्चित रूप से रौद्र ध्यान भी नहीं होगा रोग होते हुए भी। ऐसे कई संदर्भ पड़ेंगे, जो हमारे लिए चाहिए नहीं था उसका संयोग हो गया, उस काल में आर्त ध्यान प्रारंभ हो जाता है। किंतु आर्त ध्यान को मुनि महाराज रोकना चाहे तो रोक सकते, गृहस्थ के जैसे नहीं। जैसे परिग्रह जुटा रहा है तो रौद्र ध्यान तो नियम से होगा, हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद से बच ही नहीं सकता। जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होता तब तक रौद्र ध्यान तो निरंतर चलता ही रहता है। किंतु आर्त ध्यान कदाचित क्वचित होता भी है और नहीं भी होता। आर्त ध्यान को रोकना आसान है, किंतु रौद्र ध्यान को रोकना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि रौद्र ध्यान परिग्रह से जुड़ा हुआ ध्यान है और आर्त ध्यान परिग्रह से तो नहीं जुड़ा हुआ है। परिग्रह के संयोग वियोग में जो पीड़ा होती है मन में, उसका नाम आर्त ध्यान है। जहां रौद्र ध्यान होता है वहां पर आर्त ध्यान होता ही है, होगा ही, नियम से होगा और तेजी से होगा, तीव्रता से होगा। किंतु जहां आर्त ध्यान होता है केवल, वहां पर रौद्र ध्यान हो ये नियम नहीं है। जैसे छठे गुणस्थान वर्ती मुनि महाराज को आर्त ध्यान तो हो सकता है लेकिन रौद्र ध्यान कदाचित क्वचित भी नहीं होगा। आर्त ध्यान कभी कभी होगा, किसी संदर्भ में होगा, संयोग वियोग के अवस्था में, संदर्भों में होगा। इस प्रकार से मुनि का जीवन और श्रावक का जीवन इतना फर्क है कि वो धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तीन ध्यान का स्वामी है। कौन? श्रावक। तीन ध्यानों के स्वामी है वो। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान तीनों करता है वो। श्रावक हैं तो ये तीन रत्नत्रय हैं आपके। ध्यान ध्यान रत्न तीन है। बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, तीन ध्यानों का स्वामी कौन है? श्रावक। और साधु छठे गुणस्थान वर्ती कितने धर्मों के स्वामी हैं? दो, आर्त ध्यान और धर्म ध्यान ये। और सातवें गुणस्थान वर्ती साधु वो केवल धर्म ध्यान के स्वामी हैं। और आठवें गुणस्थान के साधु शुक्ल ध्यान के स्वामी हैं, धर्म ध्यान नहीं है। आठवें से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो गया और यह शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। इन ध्यानों को समझकर चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अनुवृत्तों का विकास करना चाहते हैं तो परिग्रह कम करना पड़ता है, या अपने व्यवसाय उद्योग इत्यादि में जो बार बार विकल्प पैदा होते हैं, रौद्र ध्यान पैदा होता है, आर्त ध्यान होता है, उसको रोकने के लिए हमें गुणवृत्त भी आवश्यक है और साथ साथ शिक्षा वृत्त की आवश्यकता भी है। कल गुणवृत्तों को बताया था, हाँ वो एक शिक्षा वृत्त को भी बताया था, सामूहिक शिक्षा वृत्त। गुणवृत्त अनुवृत्तों के विकास के लिए होते हैं। देखो विशेषता क्या है गुणवृत्त में और शिक्षा वृत्त में। गुणवृत्त जो होते हैं अनुवृत्तों के विकास के लिए होते हैं, अनुवृत्तों को महावृत्त में ढालना है, इसलिए अनुवृत्तों को संस्कारित किया जाता है। किन वृत्तों के माध्यम से? गुणवृत्तों के माध्यम से। गुणवृत्त कौन कौन से हैं? दिग्वृत्त, देशवृत्त, अनर्थ दंड त्याग वृत्त, इनके माध्यम से अहिंसा गुण का विकास होता है, अहिंसा गुण संस्कारित होता चलता है और एक दिन जाकर के वह महावृत के रूप में रूपांतरित होता है। इस प्रकार गुणवृत्त अनुवृत्तों को संस्कारित करने के लिए, उनको फलीभूत करने के लिए, उनके अभिवृद्धि के लिए स्वीकार किया जाता है। किंतु शिक्षावृत अलग है। शिक्षावृत का काम क्या है? तो कहते हैं शिक्षावृत में सबसे पहले क्या आया? कौन सा? सामूहिक शिक्षावृत। दूसरा प्रोषदोपवास शिक्षावृत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षावृत, अतिथि संविभाग शिक्षावृत। देखो गुणवृत्तों के माध्यम से अहिंसानुवृत्त को संस्कारित किया, अहिंसावृत को महावृत के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयत्न किया। किंतु शिक्षावृत के माध्यम से अपरिग्रह महावृत को संस्कारित करना है। कैसे? कैसे तो सामायिक करके और प्रोषदोपवास करके और भोगोपभोग परिमाण, अर्थात भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को क्या करके? प्रमाण करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते भोगोपभोग वस्तु प्रमाणित हो गए तो कौन से व्रत की सिद्धि होगी? अपरिग्रह महाव्रत की सिद्धि होगी। ये विशेषता है गुणव्रत से। थोड़ा सा आवाज जम नहीं रही पॉइंट। भोगोपभोग परिमाण व्रत का अच्छी तरह से हम यदि पालन करेंगे तो कम करेंगे, प्रतिनित्य उपयोग में आने वाले जो वस्तु हैं उनको कम करने का नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत। जैसे उसके दो प्रकार के वो होते हैं वस्तु, भोग वस्तु और उपभोग वस्तु। भोग वस्तु और उपभोग वस्तु दो प्रकार की वस्तु हैं। भोग वस्तु है ने कौन कौन, जो एक बार उपयोग में आते हैं और दोबारा उपयोग में नहीं आता, उसको कहते हैं भोग वस्तु। और उपभोग वस्तु है ने जो बार बार, एक बार उपयोग में आने के बाद भी वही वस्तु पुनः उपयोग में आ सकती हो, तो उसको उपभोग वस्तु कहते हैं। जैसे वस्त्र, आभरण, चश्मा, घड़ी, ये जो बिछा के बैठे हैं, ये घर, खेत, वाहन इत्यादि, ये सभी जो बार बार प्रयोग में आते हैं, ये उपभोग की वस्तु हैं। और भोग वस्तु कौन कौन सी, खाने पीने की वस्तु। एक बार जिस वस्तु को खा लिया फिर खाया नहीं जाता, फिर विसर्जन के योग्य हो जाता है, खाया नहीं जाता, ये भोग वस्तु। भोग और उपभोग इन वस्तुओं को कम करने का नाम है भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। शिक्षा किसकी शिक्षा मिलती है, महाव्रत धारण करने की शिक्षा मिलती है पुरुषों को, और स्त्रियों को आरिका बनने की शिक्षा मिलती है। इन 11 प्रतिमाओं के माध्यम से उपचार महाव्रत को धारण करने का अभ्यास चलता है। स्त्रियों की अपेक्षा से तो ये है, यदि कोई श्राविका 2 प्रतिमाधारी बन जाती है तो आरिका बनने का अभ्यास करती है। और आरिका बनना ही केवल अंतिम भावना नहीं रहती, किंतु आरिका व्रत भी पंचम गुण स्थान होने से हमारा वह ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, हमको तो महाव्रति मुनि अवस्था धारण करना है, वह इस पर्याय में संभव नहीं है तो अगली पर्याय में तो संभव अवश्य है। पंचम गुण स्थान के साथ 2 प्रतिमा धारण करके जीवन व्यतीत करेंगे तो अंत में संलेखना मरण होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। संलेखना मरण होने के उपरांत, संलेखना मरण होने के उपरांत नियम से कम 3 भव और अधिक से अधिक 8 भव में मोक्ष तो जाएगा ही जीव, तो इसके बीच में कभी भी वह पुनः स्त्री पर्याय को धारण नहीं करता, वह नियम से पुरुष पर्याय को ही धारण करता है। कभी देव बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव कभी मनुष्य, इस प्रकार करके 8 भवों को पूर्ण कर लेता है। और जब अंतिम समय में मनुष्य बनता है तो वज्र ऋषभ नारा सनन को बांध करके ही आता है। स्वर्ग में जब रहता है वज्र ऋषभ नारा सनन का बंध 4थे गुणस्थान में रह करके कर सकता है। 4थे गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों में वज्र ऋषभ नारा सनन का बंध नहीं होता, 4थे गुणस्थान में कर लेता है और यहाँ पर आकर के मनुष्य बनता है, फिर वज्र ऋषभ नारा सननधारी मनुष्य बनकर जन्म लेता है। अब इसी भव से मोक्ष जाने की योग्यता आ चुकी है, थोड़ी सी त्याग तपस्या करेगा मुनि बन करके तो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से आत्मकल्याण का जो मोक्ष मार्ग है ना, इस मोक्ष मार्ग को ध्यान में रख करके हमें प्रतिमाधारी बनने का अवश्य कोशिश करना चाहिए। कठिन है क्या, कुछ कठिन नहीं है, मानसिकता को कठिन बना लेंगे तो मन ही कठिन हो जाएगा, और मन को सरल बनाएंगे तो सब कुछ सरल बन जाएगा। इससे भी ज्यादा कठिन तो सांसारिक कार्य हैं। कठिन नहीं लगते आप लोगों को, बच्चों को जन्म देना, उनकी पढ़ाई कराना, उनकी चिंता करना, दुकान में बैठना, कमाना, ये तो रोजाने की क्रिया प्रमाद छोड़ करके करते हैं क्या, प्रमाद पूर्वक, और इसको किए बिना चलता है क्या संसार, नहीं चलता। प्रमाद छोड़ करके मजबूरी में कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो एक बार मजबूरी में व्रतों को भी कर लो ना, क्या बिगड़ता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा इसको भी प्रमाद छोड़ करके मजबूरी में भी कर लेंगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, आठ बहु बचेंगे। और नहीं होता नहीं होता यही मानसिक बना रहेगा तो कभी नहीं होगा। किस भाव में होगा? अगली भाव देखो, 16 पर्याय मिलती हैं स्त्रियों को और आप लोगों को 8 पर्याय मिलती। आपके 5 तो समाप्त हो गए हैं समझ लो, तो 5 में क्या मन बनाया था, ये कठिन है प्रतिमा, ये कठिन है, इसलिए तो 8-5 तो वो चले गए व्यर्थ। अब छठा आ गया, ये छठे नंबर का है समझ लो, तो इसमें भी कठिन है कह करके वंचित रहेंगे तो छठा भी चला गया। और फिर कठिन है यही संस्कार मजबूत बनेगा तो सातवां भी क्या भरोसा सक्सेस होगा, वो भी चला जाएगा। उस समय में भी कठिन है समझा, आठवां भी ऐसा ही चला गया, नौवां भी 8 ही तो है, आठवां भी ऐसा ही चला गया तो चला गया। अब कहाँ जाना पड़ेगा? निगोद जाना पड़ेगा। चलो निगोद, निगोद यात्रा करो, चलो 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 उठो। क्यों, हम क्यों निगोद जाएं? तो 8 तो समाप्त हो गए तुम्हारे, 8 पूर्ण हो गए। बरसात के दिनों में 10 नक्षत्र अगर निकल गए तो पानी बरसने वाला नहीं, पानी बरसने के नक्षत्र तो 10 ही हैं। तो वैसे ही पानी बरसने के आत्मकल्याण के शुभ नक्षत्र जो हैं वो 8 ही हैं। 8 भाव मनुष्य पर्याय, 16 भाव स्त्री पर्याय और 24 भाव नपुंसक पर्याय। देखो नपुंसक पर्याय में भी व्यर्थ गमाना ठीक नहीं है ये कहा है। 24 भाव हैं और उसमें भी वह पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, साधना कर सकता है, प्रतिमाधारी बन सकता है, महाव्रती मुनि तो नहीं बन सकेगा, पंचम गुण स्थान तक जा सकता है। वो जो उस समुद्र में रहने वाला राघव मत्स्य तंदुल मत्स्य संगी पंचेंद्री समूर्छन तिर्यंच है, दोनों समूर्छन तिर्यंच है, उनको भी 5 गुण स्थान बताई गई नपुंसक पर्याय। तो अगर 5वां गुण स्थान उस मछली ने राघव मत्स्य ने 5वां गुण स्थान एक बार धारण कर लिया और 5वें गुण स्थान में मरण कर लिया तो बाल पंडित मरण हो गए, उसके भी 8 भाव रह गए। कितने? हाँ 8 भाव रह गए, कम से कम 3 भाव रह गए। नपुंसक पर्याय में भी 24 ही मिलते हैं, 24 को सार्थक नहीं बनाया तो गया, तो निगोद जाना पड़ेगा। तो एक जीव को 48 भाव मिलते, जब आप निगोद से निकल आ रहे थे उस समय 48 फिक्स हो गए थे। 8 मनुष्य के, 16 स्त्री पर्याय में घूमने के लिए और 24 नपुंसक पर्याय में घूमने के लिए वो वीसा मिल गया था। आप तो विदेश यात्रा में हैं, लौट करके अपने देश को जाना हो तो देख लो, अपने उस देश में तो मोक्ष है ही नहीं, विदेश से ही मोक्ष है, यहां स्वदेश से मोक्ष नहीं। स्वदेश छोड़कर विदेश में आए हैं, यह विदेश हमारे लिए मोक्ष प्रदान करने वाला क्षेत्र है, इसका सदुपयोग हमें करना है। मन बना लो, तैयार करो, हो जाएगा। प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत पर्व के दिनों में अर्थात अष्टमी चतुर्दशी को समस्त आरंभ कार्यों का त्याग करके उपवास करते हुए धर्म ध्यान करना प्रोषदोपवास है। जीवन के हर मोड़ में शिक्षा मिल रही है, सावधान जागृत करना है। एक बार आत्मा को जगाओ, पुरुषार्थ करो, प्रमाद छोड़ो, कितने साल, 10-15 साल तो बचे होंगे जीवन के, कितने साल हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, बस सांसारिक इंद्रिय सुखों में तो पूरा जीवन तो चला गया है, उसमें तो पापाश्रय हो गया, पाप का बंध हो गया है, कुछ भी हो गया हो उस पाप को हम धो सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति अभी भी संभव है। अगर 30 साल 25 साल भी बच गए हैं तो बहुत है, साधना के लिए बहुत कुछ है, इतना ही कर लो, मेरे कहने से एक बार कर लो, मेरे कहने से। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है, जाएगा ही वो।
दान देने में इतना है, तो क्या जरूरी है? ये
ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं, कर्म को धोना है ना, कर्म को धोना है।
तो सस्ता मार्ग ढूंढते हैं, दान दे देकर।
सस्ता मार्ग ढूंढने से नहीं मिलता, सस्ता मार्ग से तो धीरे धीरे जाएंगे और महंगे मार्ग से बहुत जल्दी जाएंगे, अपना नहीं पड़ेगा। देखो सस्ता मार्ग चतुर्थ गुण स्थान से भी हम 3 भव 8 भव बचा सकते, कहा है, कहा है क्या नहीं कहा है, कहा है, क्या अंतिम भव में भी यही सोचोगे 8वें भव में? नहीं, हम तो केवल दान देंगे और चौथे गुण स्थान से ही मोक्ष जाएंगे, या 8वां भव है, 8 भव तो हमारे बचे हैं, मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। महंगा मार्ग तो आज न कल अपना नहीं पड़ेगा, 8 भव हैं, 8 भव में अंतिम भव में तो मुनि बनना ही पड़ेगा, महाव्रत का पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि जो सस्ता है उसको चुनाव कर ले, आगे बढ़ो, जो कठिन होता है उसको करने में ही तो आनंद है। जल्दी प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत में, ये प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत है, इस शिक्षा व्रत के माध्यम से हम क्या करते हैं, किस व्रत को साधना करते हैं, भोगो, ये कौन सा प्रोषदोपवास, इसमें तो उपवास और एकासन आदि होता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना प्रोषदोपवास है, इसके जगन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप से 3 भेद बताया। देखो ठीक नहीं है, नहीं देगा ठीक है, सवाल नहीं, पॉइंट पॉइंट ठीक नहीं। प्रोषदोपवास, प्रोषद और उपवास ये 2 शब्द हैं, प्रोषद ने एक बार खाने का नाम प्रोषद, एक भुक्ति प्रोषद, एक भुक्ति का नाम प्रोषद, प्रोषद यानी एक भुक्ति, उपवास यानी उपवास, आहार के बिना रहना, एक बार आहार करना और एक बार का आहार त्याग करना। यदि आप 2 बार भोजन करते हैं, 2 बार भोजन करते हैं तो 1 बार का भोजन त्याग और 1 बार आहार करना, अष्टमी और चतुर्दशी को, ये एकासन हो गया। अगर उपवास कर सके उपवास भी करना, एकासन कर सके तो एकासन भी करना, परंतु अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करना या तो उपवास करना, उसमें से कोई भी कर सकते हैं। और किसी दिन अष्टमी चतुर्दशी को भूल गए, विस्मरण हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो कभी भी उसको कर सकते हैं, दूसरे दिन, ऐसा होता है ना कभी कभी, अष्टमी पता नहीं चलता और चतुर्दशी पता नहीं चलता और ऐसा हो जाता है, कोई फर्क नहीं। बारीक देखो घंटी बज रही है। कौन सा पॉइंट घुमा रहे हैं, घुमा भी रहे हैं कि नहीं, ज्यों का त्यों है। माइक का कोई संबंध नहीं, नहीं कुछ नहीं, वहीं पर पॉइंट ठीक नहीं रख पा रहे हैं। फिर भी करना चाहिए ना, करने की जो बात है वो पूरी होना चाहिए। तिथि विस्मरण दोष है, परंतु दोष हो करके भी दूसरे दिन उसको सुधार लेना चाहिए। प्रोषदोपवास, इस प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत के माध्यम से किसका अभ्यास होता है? ब्रह्मचर्य कैसे? उपवास करने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है? किसका हो सकता है विचारो? हाँ, मुनि व्रत धारण करने के उपरांत नित्य एक ही बार भोजन करना है, उसका अभ्यास होगा। एक भुक्ति 28 मूल गुण में एक भुक्ति नामक मूल गुण है क्या? नहीं, उसका अभ्यास होगा। अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करते करते जाएंगे तो एक भुक्ति मूल गुण का अभ्यास होगा। अगर मान लो उपवास किया, पूरा उपवास किया अष्टमी चतुर्दशी को, और पहले दिन भी एकासन किया और बाद भी एकासन किया और बीच में उपवास किया, ऐसा भी कर सकते हैं ना, तो इस समय किसका अभ्यास होगा? तो उत्तर गुण का अभ्यास होगा। सप्तमी को एकासन किया, अष्टमी को उपवास किया और नवमी को एकासन किया, तो एकासन से मूल गुण का अभ्यास होगा। एक भुक्ति मूल गुण का अभ्यास होगा और उपवास करने से उत्तर गुण का अभ्यास होगा, यानी उपवास करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी तपस्या करने की क्षमता आपको बढ़ेगी। हाँ, वो सब मिलकर के फिर संलेखना के लिए सहायक है, वो सब मिलकर के संलेखना के लिए सहायक हो जाते। संलेखना के लिए सहायक हो जाता है प्रोषदोपवास, यह महाव्रत की ओर जाने का साधन है। स्त्रियों के लिए आरिका व्रत को, क्योंकि आरिका व्रत धारण करने के बाद भी दो बार भोजन नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, एक ही बार आहार लेना पड़ेगा, तो उस मूल गुण का भी अभ्यास होता है, और उपवास करेंगे तो तप का अभ्यास होता। इस प्रकार दोनों की अपेक्षा से इसको घटित करना। भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत से किसका अभ्यास होता है? हाँ, अपरिग्रह महाव्रत का अभ्यास होता है, यानी परिग्रह को कम करते 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 महाव्रती बनने का अभ्यास होता है। अतिथि समीभाग शिक्षाव्रत चौथा है, तो अतिथि यानी साधु, अतिथि यानी साधु, अतिथि यानी आरिका आदि जो व्रती हैं उनको अतिथि कहते हैं, जो त्यागी हैं उन्हीं को अतिथि कहते हैं, अव्रति को अतिथि नहीं कहा जाता है। मुख्य अतिथि त्यागी हैं और गौण अतिथि गौण अतिथि, क्योंकि वो गौण अतिथि हैं, इसलिए गौण अतिथि हैं। परिग्रहधारी हैं इसलिए गौंड हैं। परिग्रहधारी को गौण ही माना है। कोई भी किसी के घर में एक विशिष्ट अतिथि आ गए, वो यदि परिग्रहधारी हैं तो उनको पड़गाया जाता है क्या? नहीं, इसलिए गौण है। और मुख्य अतिथि आ गए तो पड़गाया जाता है, पूजन किया जाता है, नवोदय भक्ति की जाती है, ऐसा किया जाता है। जो उसमें सुपात्र में उत्तम सुपात्र हैं और वही मुख्य अतिथि हैं, बाकी सब गौण हैं। और त्यागी होने से उनका सत्कार यथोचित हो जाता है। आरिका, शुल्लक, ऐलक आदि का यथोचित सत्कार हो जाता है। पड़गाहना ये होता है, पड़गाहना तो चाहिए, प्रदक्षिणा नहीं होता है, क्योंकि रत्नत्रय नहीं है। हम तीन गुणों की तीन प्रदक्षिणा देते हैं, तो संयम गुण वहां कहाँ है? संयम गुण नहीं है तो प्रदक्षिणा नहीं दिया जाता। संयम की एक प्रदक्षिणा, और संयम के साथ जो दो रत्न और हैं, ज्ञान और दर्शन, उसका समादर, उसका सत्कार, उसकी विनय हम करते हैं। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे जाता है, नीचे से जाता है, और रॉकेट बहुत स्पीड से जाता है और चंद्रलोक में जाता है। तो अनुव्रत हेलीकॉप्टर है, महाव्रत रॉकेट है, वो मोक्ष में जाता है। अनुव्रत का हेलीकॉप्टर यहीं पर घूमता रहता है, मोक्ष नहीं जाता वो। हाँ, इसमें भी बताया है, देखो सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक लाए हैं, तो उसमें देख लो 37 पेज नंबर, जैन धर्म में विवेक, एक जो हेडिंग है उसमें देख लो। आरिका, ऐलक, शुल्लक आदि की प्रदक्षिणा देकर क्यों नहीं पड़गाना चाहिए, ये प्रश्न किया है। उसका उत्तर यहाँ है, संयम रहित सम्यक दर्शन की और संयम रहित सम्यक ज्ञान की प्रदक्षिणा नहीं दी जाती है। संयम रहित है ना, क्या सम्यक दर्शन, आरिका, छुल्लक, ऐलक इत्यादि इत्यादि के पास जो सम्यक दर्शन है, वो संयम से सहित है क्या संयम से रहित है? फिर वहीं आ गए, घंटी बज रही, बेसिक नॉलेज है। सवाल नहीं, वो पॉइंट रखना नहीं आ रहा है ना, सीखना चाहिए बेसिक नॉलेज। किसी मिस्त्री को बुला करके लाओ, कैसा लगाया जाता है, एक दिन सीखो, शिक्षा व्रत ले लो, शिक्षा व्रत लेकर के अभ्यास करो। देखो अभी भी सुधार नहीं हो रहा, कुछ तो घुमाओ, कुछ ऐसे क्यों बैठे। कम तो हो गया, हाँ ठीक है, एम्पलीफायर वाला बंद ही हो गया पूरा। बंदी हो गए। ऐसा नहीं, पॉइंट रखना नहीं आ रहा। नहीं, बैटरी तो है, फुल है। पूरा बुझ गया। ज्ञान की प्रदक्षिणा दी नहीं जाती है, ये समझ में आया? सम्यक दर्शन है और ज्ञान है, लेकिन संयम नहीं है। क्या कर दिया? उतना ही रहने दो, लेकिन रहने दो।
हेलो हेलो,
संयम रहित सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों हर गति में है। नारकी के नारकी जीवन में भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? चारित्र नहीं है। और यदि चारित्र है भी तो दो गति में, देश संयम की अपेक्षा से मनुष्य और तिरंज में है, परंतु देश संयम भी असंयम से युक्त होने के कारण वह भी पूजनीय नहीं होता। यदि हम परिग्रह सहित जीव की एक देश चारित्र को धारण करने वाला जीव है उसकी यदि पूजा करते हैं तो तिरंज गति में भी पंचम गुणस्थान है, संयमा संयम है, तो वो भी वंदनीय हो जाएंगे, वो भी पूजनीय हो जाएंगे। किंतु ऐसा कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते? तो देव गति में जितने देव हैं वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों को धारण करते हैं, किंतु क्या नहीं है? चारित्र नहीं है, इसलिए वंदनीय पूजनीय नहीं है। देश संयमी भी यदि वंदनीय पूजनीय होते एक देश संयम के कारण, तो फिर क्या होता कि आरिका को नमोकार मंत्र में स्वीकार किया जाता, ऐलक शुल्लक आदि को भी, प्रतिमाधारी श्रावकों को भी नमोकार मंत्र में रखा जाता, तो एक पद अवश्य ज्यादा होता उसमें। नमो लोए सव साहू नम, ये अंतिम पद है, सो दिगंबर मुनियों के लिए है ये, और इसके पश्चात आरिकाओं का एक और श्रावकों के लिए एक होना ही चाहिए। नमो आरिकानम और नमो श्रावकानम, एक पद और जोड़ना पड़ता। तो पंच नमस्कार मंत्र पंच पदों का न रह करके सप्तपदी नमोकार मंत्र बनता, तो ऐसा तो है ही नहीं। नमोकार मंत्र अनादि है और उसमें पांच ही पद हैं, और पांच ही पद पूजनीय हैं, पांच ही पद वंदनीय हैं। यह बात समझ में आती है कि नहीं? यदि आती है तो वंदना किसकी करना चाहिए ये समझ लेना है। वंदना केवल संयम की ही, असंयम न वंदे, एक पद और कहा है ना उसमें, उसको याद कर लो। असंयमी जीव वंदनीय नहीं होते। कौन कौन से असंयमी? देश संयमी और असंयमी, ये दोनों जीव नमोस्तु के योग्य, पूजा के योग्य, आरती के योग्य, प्रदक्षिणा के योग्य, पाद प्रक्षालन के योग्य नहीं होते। बस ये जैन धर्म है, पक्का जैन धर्म, फिल्टर जैन धर्म। इसको जो जानते नहीं वो गलती करते हैं अज्ञान के कारण, ज्ञान न होने से वो कुछ भी कर लेते हैं। फिर अज्ञानी जीव को ब्रेक ही नहीं रहता, उनकी गाड़ी कहीं भी भाग जाती है, और ज्ञानी बन जाए तो ब्रेक जहां लगाना है वहीं लगाता है। ज्ञानी कभी भी दोष नहीं लगाता, अपने जीवन में व्रतों में दोष नहीं लगाता, सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाता, चारित्र में दोष नहीं लगाता। ज्ञानी ज्ञानी होता है, यही समझाया है इसमें। इसको बहुत अच्छा समझा, इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि असयम सहित सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान ये दोनों सामान्यतः चारों गति के सामान्य जीवों में भी होते हैं। आरिका देश विरत गुणस्थान में होने से सयमा सयम लब्धि स्थान में होती है। लब्धि स्थान यानी विशुद्धि स्थान, सयमा सयम विशुद्धि स्थान पंचम गुणस्थान का स्थान। सयमा सयम लब्धि स्थान वंदामि इच्छामि के योग्य होता है, नमस्कार या नमोस्तु के योग्य नहीं होता। जो पद नमोस्तु के योग्य नहीं होता वह प्रदक्षिणा के योग्य भी नहीं होता, और पाद प्रक्षालन के योग्य, पादोदक लेने के योग्य व पूजा के योग्य भी नहीं होता। संयम लब्धि स्थान ही सर्व सत्कार के योग्य होता है। संयम लब्धि स्थान किसको होता है? ये मुनियों को सर्व सत्कार के योग्य होता है। सर्व सत्कार यानी नवधा भक्ति के योग्य होता है। एवं संयम लब्धि स्थान केवल मुनियों को होता है। असयमी व सयमा सयमी इन दोनों की चर्या में बाह्य हिंसा, जीवघात, अंतरंग हिंसा, रागादि भाव पाया जाता है। हिंसा यह पाप है, दोष है, दोष अधर्म है। वह हिंसा जब तक जिसके जीवनचर्या में होती है तब तक वह वंदनी पूजनी नहीं होता, क्योंकि जैन धर्म का यह मूलभूत सिद्धांत है कि दोष वंदनी नहीं होता, गुण वंदनी होता है। वंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात मैं गुणों की उपलब्धि के लिए गुणों की वंदना करता हूँ, दोषों की वंदना क्यों करूँगा? दोषों की वंदना करे, प्रदक्षिणा दें और उपलब्धि गुणों की हो, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। जिसकी उपलब्धि उपासक चाहता है उसकी वह वंदना करता है। अतः यह स्पष्ट है कि सयमा सयम लब्धि स्थान में हिंसा का अंश है और सयम के लब्धि स्थान में अहिंसा का पूरा धर्म अर्थात गुण विद्यमान है। सयम गुण के साथ रहने वाला ज्ञान गुण ही वंदनी गुण है। संयम के साथ रहने वाला सम्यक तो गुण ही वंदनीय है। ये है ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये दोनों संयम के साथी हैं तो वंदनीय है, और संयम से दूर रहते हैं तो अवंदनीय है। संयम के सत्संग में रहते हैं तो वंदनीय है, और असंयम के कुसंग में रहते हैं अवंदनीय है। समझ में है? असयम कुसंग है सम्यक दर्शन के लिए और सम्यक ज्ञान के लिए, और संयम सत्संग है। उस सत्संग में रहने से संयम की भी वंदना होती है, साथ साथ सम्यक ज्ञान की भी और सम्यक दर्शन की भी वंदना हो जाती है। पूज्यता
प्रदक्षिणा के योग्य तो मुनि ही होता है, आरिका ऐलक शुल्लक आदि नहीं। जहाँ तक आरती आदि का प्रश्न है, आरती आदि भी मुनि की ही होती है, आरिका शुल्लक ऐलक आदि की नहीं होती। आरती जो होती है ना वो किस उद्देश्य होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो केवल ज्ञान का कारणीभूत संयम है कि असंयम? असंयम, जिसके असंयम, जिसके पास असंयम हो वहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो वह आरती की होगी
नहीं।
आरती संयम की होती, और संयम के साथ यदि ज्ञान और दर्शन दोनों रहते हैं तो वो भी वंदनीय रहते हैं, पूजनीय रहते हैं, इसलिए उसकी भी आरती हो जाती है, रत्नत्रय की आरती होती है। पाद प्रक्षालन में रत्नत्रय का होता है, आरती भी रत्नत्रय का होता है, प्रदक्षिणा भी रत्नत्रय का होता
है। रत्नकरण श्रावकाचार में यदि चांडाल समय दर्शन से युक्त होता है तो उसको भी
पूजा करना चाहिए,
पूजा करते हैं देवलोक, ऐसा
पूजा करते
देवलोक
ऐसा कहा है,
पूजा करते हैं क्या, सत्कार करते हैं देवलोक, सत्कार करते हैं। सत्कार शब्द का दूसरा शब्द पर्यायवाची है पूजा। सत्कार सामान्य सभी लोगों का किया जाता है, और इस सत्कार का अर्थ है पूजा। देव लोगों ने आकर के उनका क्या अष्टविध अर्चन किया, तो क्या किया, सत्कार किया था, किस रूप में किया, किस रूप में किया सत्कार, पूजा किया था क्या, आठ द्रव्य लेकर के पूजन किया क्या, नहीं किया। तो सत्कार किया तो के माध्यम से किया, वस्त्र दे दिया, रत्न आभूषण वगैरह दे करके सत्कार किया, सिंहासन पर बिठा दिया, ये तो हो सकता, इसका नाम पूजा नहीं, इसका नाम सत्कार। सत्कार वो चांडाल था, केवल एक अहिंसा व्रत को पालन करता, अष्टमी चतुर्दशी को मैं किसी प्रकार से जीव हिंसा नहीं करूंगा, ये संकल्प हिंसा का त्याग किया था, और केवल अष्टमी चतुर्दशी के लिए। देव लोगों ने आकर के उनका भी सत्कार किया, पूजा नहीं किया, आठ द्रव्यों से सत्कार किया। देव भी तो ज्ञानी होते हैं ना, देवलोक में तो अपने से ज्यादा चर्चा चलती है धर्म की चर्चा, वहाँ अष्टविध अर्चन कैसे करेंगे। ये भी जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं, यहीं से जिनवाणी सुन करके संयम क्या है, असंयम क्या है, पूजनी क्या है, अपूजनी क्या है, इसको ये यहीं से तो सुन करके देवलोक जाते हैं। और ऐसे समय दृष्टि यदि कोई देव चांडाल की रक्षा करता है, और रक्षा के बाद सत्कार करता है, तो वह सत्कार पूजा की कोटि में नहीं आता, सत्कार की कोटि में आता है।